नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरलम के एर्नाकुलम में 11,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने मछुआरा समुदाय के कल्याण के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार 12 वर्ष से अधिक समय से कोमा में रह रहे व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2026 को मंजूरी दी। 108 नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में समर्पण किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेश से अमेरिका को 50 वर्ष में पहली तेल रिफाइनरी मिलने की घोषणा की। और तीरंदाजी में भारत 22 वर्ष में पहली बार दिल्ली में एशिया कप 2027 की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरलम के एर्नाकुलम में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की कोच्चि रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलिन इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है।
आज इस वाइब्रेंट कोस्टल सिटी से मुझे केरलम के विकास को और गति देने का अवसर मिला है। थोड़ी देर पहले केरलम के विकास से जुड़े अराउंड 11,000 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं केरलम की जनता को इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
प्रधानमंत्री ने दो प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। पहली परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग 66 के थलापड़ी चेंगला खंड पर 6 लेन का निर्माण है, जिसे 2,650 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। ये खंड मुंबई कन्याकुमारी आर्थिक गलियारे का हिस्सा है। ये कासरगोड और कन्नूर तथा मंगलौर और मुझा पिलंगड़ सहित पड़ोसी क्षेत्रों के बीच संपर्क को मजबूत करेगा। दूसरी परियोजना वेंगलम से रामनट्टुकरा तक कोझिकोड बाईपास के 6 लेन का निर्माण है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में मछुआरा समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। आज केरलम के कोच्चि में अखिल केरल धीवरा सभा के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने केरलम में 2018 की बाढ़ के दौरान मछुआरा समुदाय की भूमिका की सराहना की।
अखिल केरला धीवरा सभा आज अपनी 50th एनिवर्सरी मना रही है। ये संगठन फिशरमैन समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर काम कर रहा है। 50 ईयर्स की इस यात्रा में आपका परिश्रम जुड़ा है। मैं केरलम के सभी फिशरमैन साथियों को, धीवरा सभा के सदस्यों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
श्री मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राज्य का नाम बदलकर केरलम रखने की मंजूरी के बाद केरलम के नागरिकों को बधाई दी और कहा कि राज्य को अब उसका उचित नाम मिल गया है।
आप सभी की बरसों से इच्छा थी कि केरला का नाम बदलकर केरलम किया जाए। केंद्र की हमारी बीजेपी एनडीए सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारत के इस सुंदरतम राज्य को अब मलयाली कल्चर के मुताबिक सही नाम मिला है, सही पहचान मिली है।
प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली का दौरा करेंगे और विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे लगभग 5,650 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम केरल से तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे, जहां वे 5 नई रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे, जिनमें 2 अमृत भारत एक्सप्रेस, 2 नियमित एक्सप्रेस और 1 यात्री रेलगाड़ी शामिल हैं। वे नीलगिरी और इरोड जिलों में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के गैस वितरण नेटवर्क की आधारशिला भी रखेंगे, जिस पर अनुमानित 3,680 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। वे चेन्नई के मनाली में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के 672,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे, जिस पर 1490 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत श्री मोदी तमिलनाडु में कुल 370 किलोमीटर लंबी 89 ग्रामीण सड़कों का उद्घाटन करेंगे। वे NH-81 पर गंगई कोंडा चोलपुरम के पास एक ग्रीन फील्ड बाईपास की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद श्री मोदी का एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। तिरुचिरापल्ली से चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जल संरक्षण प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। नई दिल्ली में जारी जल महोत्सव 2026 के हिस्से के रूप में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र से जल के साथ एक अमूल्य खजाने की तरह व्यवहार करने का आग्रह किया। उन्होंने जल को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने की बात कही।
हमें जल को केवल उपयोग की वस्तु के रूप में नहीं देखना चाहिए। कहा जाता है कि जल है तो कल है। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें जल संरक्षण को अपने व्यवहार का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। यह हर्ष का विषय है कि 8 मार्च से 22 मार्च तक आयोजित किए जा रहे जल महोत्सव के दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जल के महत्व के बारे में जागरूकता किया जा रहा है।
देश भर में जल महोत्सव 2026 की शुरुआत 8 मार्च को हुई। ये महोत्सव 22 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार 32 वर्षीय एक व्यक्ति को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। न्यायालय ने पिछले 12 वर्ष से अधिक समय से कोमा में पड़े व्यक्ति के कृत्रिम जीवन रक्षक यंत्र को हटाने की अनुमति दे दी है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवन रक्षक यंत्र या उसे जीवित रखने के लिए आवश्यक उपचार को रोक दिया जाता है या हटा दिया जाता है। गाजियाबाद के रहने वाले पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र हरीश राणा को 2013 में अपनी पीजी की चौथी मंजिल से गिरने के बाद सिर में गंभीर चोटें आई थी। इसके बाद से वे एक दशक से अधिक समय से कोमा में हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा फिर शुरू हो गई है। लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष ने यह प्रस्ताव कुछ विपक्षी दलों के नेताओं के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए पेश किया है।
माननीय स्पीकर साहब के खिलाफ जो प्रस्ताव आया है, ये मैं पूरी जिम्मेवारी से कहूंगा, उनके खिलाफ अविश्वास नहीं है, किसी के अहम की संतुष्टि के लिए बात कही गई है, किसी के अहंकार के संतुष्टि के लिए बात कही गई है।
श्री प्रसाद ने आरोप लगाया कि श्री राहुल गांधी भारत के संविधान, संसद और निर्वाचन आयोग के खिलाफ टिप्पणियां करते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष का नेता सदन का हिस्सा है, इसलिए उनका आचरण भी उतना ही जिम्मेदार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें सदन में कई बार बोलने से रोका गया। उन्होंने कहा कि सदन किसी एक दल का नहीं बल्कि पूरे देश का है। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये प्रस्ताव लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत से संबंधित है और देश में संसदीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत में इंटरनेट सेवाएं विश्व में सबसे सस्ती हैं। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से डिजिटल समावेशन के तीन प्रमुख मोर्चों पर काम किया है।
कि पिछले 10 वर्षों में डिजिटल इंक्लूजन के लिए तीन फ्रंट्स पे काम किया है। सबसे पहले इंक्रीजिंग द एक्सेस टू इंटरनेट, सेकेंड मेकिंग इंटरनेट अफोर्डेबल और तीसरा प्रोवाइडिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आज से 10 साल पहले 2014 में जहां पे मात्र 25 करोड़ लोगों को इंटरनेट की कनेक्टिविटी अवेलेबल थी, 103 करोड़ लोगों को आज इंटरनेट की कनेक्टिविटी अवेलेबल है।
श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एआई नियंत्रित खिलौने बच्चों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता कार्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय इसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि जब भी कोई मामला सरकार के संज्ञान में आया है, तत्काल कार्रवाई की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि देश में स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच पर तेजी से काम चल रहा है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि कवच एक जटिल प्रणाली है जिसमें 5 उप प्रणालियां हैं। उन्होंने बताया कि 8,570 किलोमीटर में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। कोंकण रेलवे से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि क्षमता बढ़ाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर काम चल रहा है।
ये ट्रैक काफी पहले बिछाया गया था और इसमें कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कंप्लीट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम भी चल रहा है और इसमें मदद भी चाहिएगी क्योंकि इसमें चार राज्य इस कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हैं, उन सब का भी इसमें प्रयास चाहिएगा। इसमें मदद महाराष्ट्र से और गोवा से मिल रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कर्नाटक सरकार और केरल सरकार भी इसमें अपना योगदान दे।
छत्तीसगढ़ सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2026 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय कल शाम रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देवसाई की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य राज्य में बलपूर्वक प्रलोभन, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव या गलत बयानी के माध्यम से किए जाने वाले धर्मांतरण पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाना है। ये विधेयक बजट सत्र में पेश किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में 108 नक्सलियों ने समर्पण कर दिया है। इन जिलों में बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, नारायणपुर और कांकेर शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि इन नक्सलियों पर 3,95,00,000 रुपए का इनाम था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि भारत इस महीने के अंत तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में नौसेना के 24 वर्षीय जवान को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि खुफिया जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति पाकिस्तान स्थित आईएसआई एजेंट के संपर्क में था और संवेदनशील जानकारी साझा कर रहा था। आरोपी की पहचान आगरा निवासी आदर्श कुमार उर्फ लक्की के रूप में हुई है, जो केरलम के कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में लांस नायक के पद पर तैनात था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेश से अमेरिका को 50 वर्ष में अपनी पहली तेल रिफाइनरी मिलेगी। श्री ट्रंप ने कहा कि टेक्सास के ब्रांसविले बंदरगाह पर बनने वाली ये नई रिफाइनरी अमेरिका के बाजारों को ईंधन प्रदान करेगी, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगी, अमेरिकी ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगी और हजारों रोजगार सृजित करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से सौदे पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पश्चिम एशिया में नई सैन्य कार्रवाई के कारण संघर्ष तेज हो गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि नौसेना ने ईरान के 16 जहाजों को नष्ट कर दिया है। माना जाता है कि ये जहाज हुर्मुज जलडमरू मध्य के पास नौसैनिक खदानें बिछाने में शामिल थे। अमरीका और इसराइल की सेनाओं ने दावा किया है कि उन्होंने संघर्ष शुरू होने के बाद से 5,000 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान लगातार बमबारी के बावजूद जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की हैदराबाद से फुकेट जाने वाली उड़ान में थाईलैंड के फुकेट हवाई अड्डे पर विमान के अगले पहिये में खराबी आ गई। सूत्रों के अनुसार विमान के रनवे पर फंसे होने के कारण अधिकारियों ने फुकेट हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन निलंबित कर दिया। बोइंग 737 मैक्स 8 विमान में सवार यात्रियों की संख्या तत्काल ज्ञात नहीं हो सकी। भारत 22 वर्ष बाद पहली बार शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। दिल्ली को 2027 में एशिया कप के दूसरे चरण की मेजबानी सौंपी गई है। वर्ष 2005 में आखिरी बार दिल्ली में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के दौरान अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। शनिवार को असम और मेघालय में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। गुजरात के सीमावर्ती जिले कच्छ में भीषण गर्मी पड़ रही है। इसे देखते हुए बुधवार के लिए ऑरेंज अलर्ट और बृहस्पतिवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरलम के अर्नाकुलम में 11,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने मछुआरा समुदाय के कल्याण के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार 12 वर्ष से अधिक समय से कोमा में रह रहे व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2026 को मंजूरी दी। 108 नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में समर्पण किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेश से अमेरिका को 50 वर्ष में पहली तेल रिफाइनरी मिलने की घोषणा की और तीरंदाजी में भारत 22 वर्ष में पहली बार दिल्ली में एशिया कप 2027 की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।